הוא מגיע לאנדר שבנהל ההנגמה של אגה, תקשורים לתעניין את עצמי שאירו. סביץ' איתן למנוע בשבתה מסתר, איתן יהיה למותו. והיה מרו פקדה, הרי הם דעת יסודה אנגה. זה היה סיכוי ששנה שאיתן למרות את זה.
הרי קרישנה, 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 הרי הרי. הרי רם, הרי רם, 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 הרי.
סמנה פשני בר. एक श्लोक लास्ट में जो लिया था वो तीन प्रकार के जो कर्ता होते हैं उसके संबंध में था, जिसमें हमने चर्चा किया था कि सबसे पहला जो कर्ता जो स्त्रोगुणी कर्ता है टेक्स्ट नंबर 26 में, वो कर्ता कि जो विषय में बताया गया था वो वास्तव में एक डिवोटी, एक वैष्णव जो होता है उसके विषय में बताया गया था। उसका आप अनुवाद पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ सकते हो।
जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है।
हाँ, तो यहाँ पर संकल्प, उत्साह, सफलता, असफलता और अहंकार से रहित होकर के कर्म करता है। तो भक्त जो होते हैं उनके विषय में कहा जाता है कि लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था माधुरी कादंबिनी से, आपके पास शायद लिखा होगा अलग अलग प्रकार के पांच या छह प्रकार के अनिष्ठिता भक्ति, जो भक्ति में जो निष्ठा होती है उसमें, जैसे पहले अपने चर्चा के साधु श्रद्धा था तो साधु संग, फिर भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है निष्ठिता और निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा। लेकिन भजन क्रिया जो होती है वो भजन क्रिया में भी दो प्रकार की भजन क्रिया होती है, एक होती है निष्ठित भजन क्रिया और अनिष्ठित भजन क्रिया। और अनिष्ठित भजन क्रिया जो है उसमें हम हमारे अपने जीवन में भी देख सकते हैं। वास्तव में जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारी समस्या ये रहती है कि हम एक हद तक आगे बढ़ जाते, एक सीमा तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे नियमित रूप से चैंटिंग हो जाना, फिर शास्त्र का अध्ययन करना, चार नियमों का पालन करना, और कभी कभी सत्संग में, कीर्तन में, इस तरह से अलग अलग प्रकार से और से भाग लेना। लेकिन उस अवस्था में भी कई साल निकल जाते हैं। ऐसे सब कुछ कर रहे हैं, 16 माला, चार नियम, ये सब कुछ हो रहा है, सेवा भी हो रहा है, ड्यूटी वर्शिप कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उस अवस्था में कई साल निकल जाते हैं और कभी कभी तो पूरा लाइफ निकल जाता है। तो क्या करना चाहिए? प्रभु जी, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वही करना चाहिए, लेकिन वो आपका भजन क्रिया जो है उसका परिणाम आना चाहिए, और वो परिणाम जो है वो है अनर्थ निवृत्ति, उसका परिणाम आना चाहिए। नहीं तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनेक अनेक साल नहीं, अनेक अनेक जन्मों तक अगर आप श्रवण कीर्तन करते रहोगे, 16 माला करते रहोगे, अनेक अनेक जन्मों तक, तभी भी कृष्ण के चरण में आपको प्रेम प्राप्त हो या नहीं हो इसकी गारंटी नहीं हो सकती। यस,
अनर्थ निवृत्ति हो रही है कैसे?
हाँ, ये अच्छा प्रश्न है।
और दूसरा कनेक्टेड क्वेश्चन है कि अनर्थ में क्या क्या, मतलब हम उसको कैटेगराइज करते हैं, क्या क्या चीज हो थोड़ा?
अनर्थ ऐसे तो विस्तार से हम अभी चर्चा नहीं करते, लेकिन अनर्थ में आता है, वास्तव में अनर्थ उसको कहते हैं कि जो आपकी कृष्ण भावना मृत के प्रतिकूल हो। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन में जो प्रतिकूल हो, उस अनर्थ के अंदर पाप कर्म आते हैं अलग अलग प्रकार के, जो इंद्रियों या मन के माध्यम से किए जाते हैं, फिर अपराध आता है। पाप और अपराध में थोड़ा अंतर रहता है। अपराध में अर्थ होता है कि एक होता है सिंफुल एक्शन और दूसरा होता है ऑफेंस। ऑफेंस का अर्थ क्या होता है कि जब जहां विशेष रूप से कृष्णा अप्रसन्न होते हो। पाप कर्म जो होता है वो वास्तव में कृष्णा को दुखी तो करता है, लेकिन उसका अधिक परिणाम तो एक्चुअली हमारे कर्मों के आधार से हो जाता है। लेकिन अपराध एक ऐसी वस्तु होती है कि जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आप कृष्ण को दुखी कर रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से। अप का अर्थ होता है नहीं और राध का अर्थ होता है प्रसन्नता। तो अपराध, राध शब्द राधा रानी से आता है, क्योंकि राधा रानी का अर्थ होता है कि जो कृष्ण को प्रसन्न करते हैं वो राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति। और अपराध का अर्थ होता है कि जो इसके विपरीत हो, अर्थात। और फिर अपराध में फिर सब कैटेगरीज होती है, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, ये सब कैटेगरीज होती है। सो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है, और वो सारी कैटेगरीज जो होती है उसमें से कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। इसके साथ साथ मानसिक रूप से जो अनर्थ होते हैं उसमें सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों प्रकार के अनर्थ, ऐसे अलग अलग प्रकार के अनर्थ होते हैं। जैसे ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अहंकार, ये सब अनर्थ के भाग है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब
ऑफेंस और सिन, पाप, ये दोनों मन से और इंद्रिय दोनों से हो सकते
हैं। तीन तरह से हो सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा।
मतलब वाचा और कर्मणा एक साथ इंद्रियों को ले तो हाँ दो ऐसे।
बट इफ यू काउंट देम एज प्रिस्क्रिप्टेड इज थ्री डिफरेंट वेज, इवन अपराध ऑल्सो। उस तीनों का सीवियरिटी अलग अलग होता है। मन का सबसे कम सीवियर होता है, मन से ऊपर होता है, मन से अपराध में मन सबसे कम होता है, फिर उसके उससे सीवियर होता है वर्बल, और उससे सीवियर होता है फिजिकल अपराध। जैसे वो भृगु का है, मन से अपराध किया था, फिर मन से उन्होंने ब्रह्मा जी का अपराध किया था, वर्बली शिव जी का अपराध किया था, और फिजिकली विष्णु का अपराध किया था। यस प्रभु।
संत बता रहे थे कि कलयुग की ये खूबी है कि विशेषता है कि इसमें मन का अपराध
क्षमा किया जाता है,
केवल फिजिकल अपराध छोड़
दिया। यस, कलयुग में मन से द्वारा किया गया अपराध, विशेष करके अपराध से भी मोर स्पेसिफिक, मन से किए गए पाप मोर स्पेसिफिक, वो क्षमा किए जाते हैं। मन से किए गए पाप, उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ता मन से किए गए पाप। लेकिन अगर मन से अगर आप अपराध करते हो, समझ लो कि मन से आप किसी वैष्णव का बुरा सोचते हो, किसी भगवान के विग्रह के विषय में, या तो जो बुरे विचार है, हालांकि भगवान उसको क्षमा, वो लेस सिवियर, जैसे मैंने बताया ना, मन से किया गया जो अपराध होता है वो बहुत बहुत लेस सिवियर होता है, वर्बली ज्यादा होता है और फिजिकली उससे ज्यादा होता है सिवियरिटी। तो और मन से किए गए कोई भी पाप अपराध जनरली फिजिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं आसानी से। अगर मैं निरंतर किसी के विषय में नेगेटिव सोचता रहता हूँ तो ये स्वाभाविक है कि मेरे मुख पर वो आ ही जाएगा। वर्बली मैं किसी को बोल ही दूंगा इसके विषय में, कितना भी कंट्रोल करूं लेकिन किसी को तो बोल ही दूंगा मैं।
यस, तो प्रभु जैसे आप, जैसे अगर किसी भक्त का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है हमें, तो हम मन पे तो वो हम, क्योंकि हम सब सेंसिबल है, हम समझ सकते हैं कि ये इनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो अगर हम उन मन से हम ये सोच लिया तो, और फिर उनको अवॉइड कर रहे हैं कि हमारा जैसे ये कर्म और वाचा से हम अपराध ना करें, तो इज इट ओके?
हाँ, क्योंकि रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि जो कनिष्ठ होते हैं, जो कनिष्ठ भक्त हैं, उनको मन से आदर देना चाहिए, उनका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। आप उस व्यक्ति को अवॉइड इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उनके साथ समय व्यतीत नहीं करना चाहते, इसलिए आप उनको अवॉइड कर रहे हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको मन से भी आदर ना दें। मन से आदर देना चाहिए, क्योंकि वो कमजोर विद्यार्थी है, वो पेशेंट जो है वो रोगिष्ट अवस्था में है, वो उसकी जो दवाई है वो भी ठीक से ले नहीं पा रहा है, लेकिन वो शरणागत है, भले पूरी तरह से नहीं है, 1% है, 10% है, व्हाटएवर इट इज, माला का जप कर रहा है या फिर मंदिर आ रहा है या फिर, इसलिए उसके कुछ अच्छे गुण ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए उस व्यक्ति को आदर दिया जा सकता है, तो इसलिए उनको आदर देना चाहिए। उनसे बातचीत अगर करनी पड़े कोई भी कारण से तो बहुत मिनिमम बातचीत करते हैं, जितना आवश्यकता हो, लेकिन जब भी बातचीत करते हैं लेकिन अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं कि आप उस सामने वाले व्यक्ति को आप दुखी करके बातचीत कर रहे हो, इस तरह से नहीं। तो ये स्वाभाविक लक्षण होता है, तो ये सब अपराध में अनर्थास में आते हैं, ये सब मिलकर के अनर्थ होते हैं, और ये सब निकलना चाहिए, ये अनर्थ, ये सब जब निकल जाते हैं तब जाके प्रेम तो बहुत दूर है अभी भी, तबू तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम, प्रेम तो भगवान का बहुत दूर है अभी, इसके बाद तो आता है निष्ठा, फिर आसक्ति, ये सब आता है, रुचि, ये सब आता है इसके बाद, जिस लेकिन मैंने जैसे बताया वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाता है एक एक करके। अगर समझ लो कि श्रद्धा, तो अगर आप उसको काउंट करो 1 to 100 फॉर एग्जाम्पल, लेट से 1 से 100, तो 1 से 10 तक पहुंचता है, इनकेस एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, तो उसके बाद सीधा साधु संघ शुरू हो गया, साधु संघ 1%, वहां 11 हुआ और यहाँ पर साधु संघ 2%, लाइक दैट, यू नो, और थोड़ा साधु संघ समझ लो 5% हाँ, वो तो पीछे बढ़ ही रहा है, और श्रद्धा के बाद साधु संघ 5%, 10% हुआ, फिर भजन क्रिया शुरू हुआ, तो अभी 3 एक एक साथ चल रहे, और भजन क्रिया भी एक साथ चल रही है, साथ साथ में तीनों का काउंटिंग चालू है, फिर भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति ऐड हुई, तो उसका भी काउंटिंग चालू और इसका भी, चौथा चीज भी काउंटिंग में शुरू हो गया अनर्थ निवृत्ति। लेकिन अनर्थ निवृत्ति में कुछ प्रतिशत प्राप्त करने के पश्चात, कुछ लेवल प्राप्त करने के पश्चात हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाते, एक बार निष्ठा का काउंटिंग शुरू हो जाता है तो आपका पतन होना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है, फिर आपका पतन नहीं होगा, कैसी भी माया आपके सामने आ जाए, कैसा भी परीक्षा भगवान आपका करे, आप कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, ये निष्ठा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप 100% अनर्थ से निवृत्त हो गए हो, इसका अर्थ ये नहीं हुआ, वो चल रहा है बैकग्राउंड में, तो ये सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है और फिर ऐड होता जाता है प्लस, फिर रुचि ऐड होता है फिर So, इस तरह से हमने भजन क्रिया के विषय में लास्ट टाइम बात किया था,
तो सॉरी, इनका इनका आंसर कैसे पता चला, अनर्थ निवृत्ति निवृत्त,
अच्छा हाँ यस, अनर्थ, यस पूरी
अनर्थ निवृत्ति की शुरुआत हो गई है, ये कैसे पता चलेगा?
इसको समझना आसान है, क्योंकि आप खुद अपने आचरण में देख सकते हो कि वैसे कुछ कर्म पहले आप करते थे जो अब ग्रेजुअली डाउन हो रहे या कम हो रहे, और कुछ तो अभी मिट गए पूरी तरह से, कुछ ऐसे कर्म है कि जो तो अभी अभी है ही नहीं आपके पास, अब वो करते ही नहीं आप, उससे आप मुक्त हो गए हो,
जो प्रतिकूल है,
हाँ जो प्रतिकूल थे ऐसे कुछ कर्म, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कर्म है कि जो ऑलमोस्ट चला गया है लेकिन कभी कभी परेशान कर देते, चाहे वो कर्म हो चाहे वो विचार हो। उसी तरह से अपराध में, अगर समझ लो कि पहले मैं आए दिन किसी वैष्णव के विषय में कुछ भी बोल देता था फॉर एग्जाम्पल, और बाद में जब मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया तो क्या परिणाम हुआ, मैं इस बार एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ सब कुछ, कि अगर कंट्रोल करना शुरू किया तो क्या हुआ कि मैं 10 लोग को बताता था पहले, लेकिन अब 5 लोग को बताना शुरू किया, पहले 10 को बताना था, 5 को बताना, लेकिन अब काफी महीनों के बाद देखा मैंने कि आपको केवल दो तीन लोग को ही बताता हूँ, ज्यादा नहीं बताता। और फिर उसके बाद फिर देखा गया कि मैं एक छोड़ के एक बताता हूँ, सब नहीं बताता, थोड़ा बताया थोड़ा नहीं बताया, ऐसे अगेंस्ट में किसी के विषय में। फिर कभी कभी क्या हुआ कि 6-6 महीने तक किसी को कुछ बताया ही नहीं है, बताया इन द सेंस कि किसी के विषय में कुछ बोला ही नहीं है, या सोचा नहीं, या फिर फिजिकली कुछ किया नहीं है। और फिर इस तरह से फिर डाउन होता जाता है, एक साल भर में कभी आप फिर आप खुद भूल जाते हो, अच्छा मैंने किसी वैष्णव की निंदा कब की थी, 17 में, 16 में, 15 में, 2010 में कब किया था, ऐसे आप खुद ही भूल जाएंगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक से बस नेक्स्ट डे आप एकदम महात्मा बन जाओगे, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इतने जन्मों से फंसे हुए, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो वृत्ति है, वो बहुत जन्मों से, अनेक अनेक जन्मों से इस प्रकार से आदत ही हो गई है, और इसलिए इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना ये चैलेंज है, और इसके कारण संघर्ष करना पड़ता है। मन से संघर्ष होता है, फिर इंद्रियों का संघर्ष होता है। जैसे अगर समझ लो कि आप कुछ होता है कि वो कुछ खाने की आदत ही है, फॉर एग्जाम्पल, ये इंद्रियों से संघर्ष वो नहीं रोक पाते अपने आप को, आप चाहे कितना भी उसको समझाओ वो नहीं रोक पाते, वो खाना ही है उसको,
डायबिटीज
वाले जो होते हैं, डायबिटीज या फिर एग्जाम्पल के रूप में, आई मीन डिफिकल्ट एक्चुअली, वो क्या है, वो उनको भी नहीं, उनको भी पता है कि मुझे नहीं करना है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ, मन से इंद्रियों से संघर्ष होता रहता है निरंतर। अगर भक्त लोग जो होते हैं उनको संघर्ष में सफलता के लिए भगवान सहायता करते हैं, मन और इंद्रियों के साथ जो संघर्ष होता है उसमें भगवान सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए चुटकी का काम है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बहुत प्रिय कोई वस्तु है, एक सेकंड के अंदर उसका फ्यूज उड़ा देते हैं, खत्म, अब आपको फिर उसके विषय में कोई आकर्षण बचा ही नहीं है। ये होता है, प्रैक्टिकल है, मैंने मेरी लाइफ में तो ऐसा कई बार देखा है कि कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम छोटी उम्र में जब मैं जुड़ा उससे पहले काफी आकर्षण होता है, लेकिन अचानक से छू पता नहीं पड़ता कहाँ चला गया। तो ये सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। सो हमने जो 5 या 6 अलग अलग स्टेज बताए थे, 6 अलग अलग थे ना स्टेज, तो वो आप उत्साहमयी, जिसमें भक्त जो होता है वो अपने आप को थोड़ा बहुत सेवा या थोड़ा बहुत प्रगति करने से पफ्ड अप हो जाता है, फूल जाता है, उसको सोचता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ शायद, इसको अनुभव कोई है ही नहीं है बचा। तो बाद में वो फंस जाता है बेचारा, फिर घन तरल में होता है, कभी एकदम ऊपर चला जाता है कृष्ण भगवान, और कभी एकदम डाउन, घन तरल, कभी एकदम उसके कृष्ण कॉन्सियसनेस एकदम 64 माला जब कर लेगा और कभी पूरा निर्जल फास्ट कर लेगा, एकादशी कर लेगा, रजमंडल परिक्रमा करके आ जाएगा 1 महीने का, एकदम ऊपर चला जाता है ग्राफ उसका, और जैसे रजमंडल खत्म करके आता है 2 महीने के बाद फिर माया के काम में घुस गया। कभी 64 माला करता है, कभी 5 माला करता है, कभी 2 माला करता है, तो ये घन तरल है, एकदम ऊपर एकदम नीचे। फिर व्यूढ़ विकल्प में क्या होता है कि कंफ्यूज रहता है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, शादी करूं नहीं करूं, ब्रह्मचारी रहूं गृहस्थ रहूं, सोचता रहता है क्या करूं, बिजनेस छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, नहीं बिजनेस करूं, ऐसे कंफ्यूज रहता है हमेशा व्यूढ़ विकल्प में। फिर विषय तरंग, विषय संग्रह, विषय संग्रह में वो व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करता है निकलने के लिए, संघर्ष करता रहता है वो विषयों के साथ, बहुत प्रयास करता रहता है, यद्यपि उसको पता है सच क्या है गलत क्या है, कहीं ना कहीं शोक भी करता है, हाय हाय मैं कैसा दुष्ट हूँ, इतना जानने के पश्चात भी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से छूट नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसा बदमाश हूँ कि मुझे पता है कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो ये निरंतर उसके विषय में मन में आता रहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। सोच तो रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है, संघर्ष करता है, और कभी कभी सफलता मिल जाती है, फिर गिर जाता है, फिर वापिस शोक करता है। ऐसा तो वो इस तरह से चलता रहता है उसका विशेष संग्रह। और फिर नियमक क्षमा, अक्षम, नियम पालन करने में अक्षम, अर्थात बनाता है कुछ रेजोल्यूशन, कुछ व्रत लेता है, आज से रोज भोजन से पहले 16 माला कंप्लीट करूंगा। और फिर वो एक दिन होता है, दो दिन होता है, तीसरे दिन पूछते हैं, आज तो अभी एक भी नहीं हुआ है भोजन से पहले, और नियम पालन नहीं कर पाते। ये तो एक एग्जांपल, कोई सोचता है कि मैं अब से डेली 1 घंटा प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ूंगा, 2-3 दिन पढ़ पाता है, फिर नहीं पढ़ पाता है, लाइक दैट। सो एनी नियम, कोई भी एनीथिंग, अब मैं 100% कर नहीं पाता है, उसको बोलते नियम अक्षम। और फिर लास्ट में हमने चर्चा किया है तरंग रंगिनी, तरंग
रंगिनी,
या तो उसमें क्या देखते हैं हम कि
भक्ति के
साथ साथ
टू गेट एंटेंगल्ड इनटू द हैप्पीनेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम भक्ति,
यस, जिसमें लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मतलब सर पूरी लाइफ में मुझे किसी ने आज तक हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया, ये तो दंडवत कर रहा है। और प्रभु जी, गुरु जी, बापू जी, क्या क्या बताते,
महाराज
क्या क्या बोलते हैं। और इसके साथ साथ फिर आपको डोनेशन मिलता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, उपहार आते हैं, गिफ्ट आती है, एनवलप आते हैं, तो ये सब बहुत सारा रिस्पेक्ट। फिर अनुयायी आपके शिष्य बन जाते हैं, प्रभु जी आप जैसे बोलूंगा ना वैसे ही करें, गुरु जी वैसे जैसे बोलूंगा वैसे, ऐसे ऑटोमेटिकली आता है ये सब रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आता है। तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब जो आता है उसमें वो फंस जाता है। तो इसके तरंग, अलग अलग प्रकार के तरंग, इन शॉर्ट वी डिस्कस अबाउट दिस, हमने इसके विषय में चर्चा किया था विस्तार से लास्ट टाइम। सभी रजोगुणी और तमोगुणी कर्ता के विषय में भगवान बताएंगे।
जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है।
इफ देयर आर स्मॉल पर्पस देन आई वुड लाइक टू रीड देम।
हाँ, तात्पर्य, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसीलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी रहता होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी हो जाता होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा होता है, ऐसा ही होता है।
या सो ये ऐसे लोग शायद आपको पूरे जीवन लाइफ में सब जगह लेफ्ट राइट सेंटर सब जगह यही मिलेंगे, राइट, आपको सब जगह ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है। बस मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, कई बार आपको पकड़ प्रभु जी वो तो सब करेंगे लेकिन उसमें मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ होगा। तो बिना लाभ के वो कुछ भी नहीं करते बिना लाभ के, और विशेष करके जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, देखो वो उनका एक एक मिनट का मीटर होता है, 1 मीटर रहते हैं तो 1 लाख रुपया, 2 मिनट रहते हैं तो 2 लाख रुपया, ऐसा उनका प्राइस होता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, लोभी होता है और एक यहाँ पर रहता है सदैव ईर्ष्यालु। सदैव ईर्ष्यालु का अर्थ होता है कि वो निरंतर ईर्ष्या करता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कोई तो उससे आगे होगा ही। तो वो हमेशा ईर्ष्या करता रहता है। फिर अपवित्र, अपवित्र का अर्थ प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अपवित्र पवित्र वो लोग नहीं होते, क्योंकि उनको इसकी कोई परवाह नहीं होती, कुछ भी करो एनीवे, यू नो, मार के नीति से अनीति से कुछ भी करो, देख उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी एक लेक्चर में बता रहा था कि समझ लो कि चार लोग को फांसी देने की बात कितने एक दो महीने से आप सुनते आ रहे हो कि इन लोग को फांसी मिलने वाली है, फांसी मिलने वाली है, पढ़ते पढ़ते भी बोर हो गया लोग, बोले मिलती तो है नहीं, छोड़ो क्या पढ़ने का इसको। तो इसके विषय में कुछ लोग मुझे बता रहे थे, मिस बातचीत हो रही थी, तो कि जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं या फिर व्हाटएवर, तो वो लोग कितने करप्ट होंगे, आप सोचिए कितने करप्ट, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, दे डोंट हैव हार्ट, कोई फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं, उनको एक ही सिंपल लॉजिक है उनका, मनी, कहां से पैसा मिल सकता है, उसके लिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पब्लिक स्टेटमेंट भी देते हैं। तो यू हैव सीन सच पीपल, धन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो अपवित्र हो सकते हैं वो लोग, उनके कार्य अनुचित उचित अनुचित का कुछ ध्यान नहीं रखते वो लोग, ये पाप कर्म है ये पुण्य है ये सब नहीं देखते। और जब कभी 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 उसको सुख प्राप्त हो जाता है तो दो इंच ऊपर चलता है समाज से, और उसको कोई बहुत ज्यादा धन हो गया तो दस लोग को बताएंगे कि देखो मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना धन है। लेकिन जैसे उसको दुख आ गया तो बहुत विचलित हो जाए, फिर सीधा चल जाता है किसी बार में और ड्रिंक करता रहता है, दुख में विचलित हो जाता है, सहन नहीं कर सकता, या फिर कभी लटक जाता है कहीं पर। तो ये सब रजोगुणी लोगों का मानसिकता होता है। और ये वृत्तियां जो है, ये कर्ता की जो वृत्तियां है, जो कर्ता के विषय में बताया है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भक्त बन गए ना इसलिए हमारे लिए नहीं ये सब, वो तो उन लोग के लिए। लेकिन जब तक हम पूर्ण रूप से अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हमारे अपने आप हमारी चेतना, तो इसमें से हो सकता है कि कुछ हमारे अपने लक्षण में भी इसमें पाया जाता है। अगर समझ लो मैं खुद दुख सुख और दुख से विचलित हो जाता हूं बार बार, तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्वाभाविक है कि कर्ता जो है वो रजोगुणी हुआ, कि अगर मैं भक्ति में ही इतना विचलित हो जाता हूं, या फिर मैं धन देखता हूं और सारा कृष्ण भक्ति को एक कटोरी में एक यू नो बैग में डाल के बंद करके रख देता हूं, तो कृष्ण भक्ति एक साइड, पैसा एक साइड, पैसा मिलने के लिए फिर मैं कुछ फॉलो नहीं करता नियम। जैसे आई नो कुछ भक्त होते हैं, एक भक्त था, उसने शराब बेचने का बिजनेस शुरू किया था, तो उसको हमने बोला कि आप इस तरह का बिजनेस क्यों करते हो विदेश में, एक ऐसा बिजनेस क्यों करते हो, ये अनुचित बिजनेस है, आप ऐसा बिजनेस। फिर एक था कि जो स्लॉटर हाउस में मैनेजर बना था, अब तो व्हाट इज दिस, इसका अर्थ क्या हुआ, तो वो रजोगुणी करता हो गया, वो रजोगुणी या तमोगुणी करता हुआ, राइट। हो सकता है वो दीक्षित हो दीक्षित नहीं हो, सोला माला करता है नहीं करता है, लेकिन अभी तक उसका जो लोभ था वो नहीं गया, और इसके लिए उसने उचित अनुचित कार्य के विषय में सोचा नहीं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब नहीं सोचा उसने। सो ये हो सकता है इसमें से हमारे अपने कर्मों में भी इस प्रकार से कुछ चीज पाई जाए। यस,
मेरे पहचान में एक भक्त है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, तो एक तरह से देखा है तो वो सबको जुआई खिलाते हैं। Yes. तो मतलब उन्होंने अपने गुरु से जब बात किया तो उन्होंने बोला कि आप नहीं करोगे, यू विल नॉट गैम्बल, ठीक है आप अपना जॉब है। Yeah. और एक्चुअली वो डायरेक्ट जुआ नहीं है।
Yes.
और उन्होंने बोला तो उन्होंने मुझे बता रहे थे कि मैं चाहूं तो आराम से लखपति करोड़पति बन सकता हूं, हाँ। उनको सब बता देता है कहां से क्या ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वो मैंने कभी
सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है।
हाँ, मैं कभी ट्रेड नहीं करता।
यस, अगर वो चाहे तो ऐसा हो सकता है, बट यू नो दिस आर सम ऑफ द जैसे स्लॉटर हाउस है वो ये सब बहुत जघन्य वस्तु है। सो लाइक दिस ये हुआ रजोगुणी करता और इस तरह से है तमोगुणी करता। पढ़िए
जी, करता हमेशा शास्त्र ज्ञा विरुद्ध कर्म करे छे, जे भौतिकवादी जिद्दी कपटी तथा अन्य लोकोनो अपमान करवामां काबिल होय छे, अने जे सदा आळसु खिन्न तथा काम करवामां नाहक ढील करनार होय छे, ते तमोगुणी कहेवाय छे।
तात्पर्य पढ़ सकते।
शास्त्रोक्त आदेशो माथी आपणने जाणवा मळे छे के केवा प्रकारनुं कार्य करवुं जोईए અને કેવા પ્રકારનું કાર્ય ન કરવું જોઈએ। જે મનુષ્યો શાસ્ત્રોની આ આજ્ઞાઓનું અવગણના કરીને ન કરવાના કાર્યો કરે છે તેઓ સામાન્ય રીતે ભૌતિકવાદી હોય છે। તેઓ શાસ્ત્રોના આદેશો પ્રમાણે નહીં પણ પ્રકૃતિના ગુણો અનુસાર કાર્ય કરે છે। આવા કરતા સૌજન્યશીલ હોતા નથી અને સામાન્ય રીતે તેઓ બહુ ધૂર્ત તથા અન્યોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે। તેઓ ઘણા આળસુ હોય છે, કામ હોવા છતાં તે બરાબર કરતા નથી અને પછી તે કામના પાછળથી કરવા માટે બાજુએ મૂકી દે છે, તેથી તેઓ ખિન્ન રહે છે। તેઓ કામમાં બિનજરૂરી ઢીલ કર્યા કરે છે, જે કામ એક કલાકમાં પૂરું કરી શકાય તેને વર્ષો સુધી ઢસડતા રહે છે, અથવા કાર્યો આવા કાર્ય તમોગુણી હોય છે।
તો યહાં પર બતાયા હૈ કે શાસ્ત્ર કે આદેશ કે વિરુદ્ધ કાર્ય કરતા રહેતા હૈ। અધિકતર ઉસકે જો કાર્ય હોતે હૈ, અગર સમજ લો કોઈ સ્લોટર હાઉસ મેં નોકરી કર રહા હૈ યા સ્લોટર કર રહા હૈ કિસી કો, તો ઉસકા તો દિન હી શુરૂ એસે હોતા હૈ, યુ નો પાપ સે હી શુરૂ હોતા હૈ દિન, ઓર ફિર એસે પાપ સે કમાયા હુઆ ધન હોતા હૈ ઓર ઉસકો લેકર ઘર આતા હૈ, તો ક્યુંકિ પૂરા દિન એસે ઉસને ગુજારા તમોગુણ મેં, તો ઘર મેં આકે ભી ઉસકે હૃદય મેં દયા જૈસી કોઈ ચીજ તો બચી હોતી નહીં હૈ, ઓર ફિર વાપસ ઇન્દ્રિય ભોગ કરતા હૈ। તો ઇસ તરહ સે ઉસકા દિન ઓર રાત પૂરા શાસ્ત્ર કે વિપરીત કામ કરતા હૈ। ફિર કાયે જો ભૌતિકવાદી, ભૌતિકવાદી કા અર્થ હોતા હૈ કે વો કેવળ અપની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કે લિયે કાર્ય કર રહા હૈ, હઠી ઉસકો સમજાને કે બાદ સમજતા નહીં હૈ, ઉસકો બતાઓ કે દેખો તુમ યે ઠીક કર નહીં કર રહે હો, લેકિન નહીં ઉસને પકડ કે રખતા હૈ। ફિર કપટી હોતા હૈ, કપટી કા અર્થ ક્યા હોતા હૈ કે છલ કરતા હૈ, આપકો બોલતા હૈ કુછ ઓર કરતા હૈ કુછ ઓર, છલ કરતા હૈ વો, કિસી કે સાથ ભી છલ કર સકતા હૈ વો, ઓર કિસી કો અપમાન કરને મેં ઉસકો ભલી બાત યાદ હૈ વો, નો ઉસકો સારી ટેકનિક આતી હૈ કે કિસકો અપમાન કૈસે કિયા જાય, યુ નો એક્સપર્ટ હોતા હૈ કિસી કો અપમાનિત કરને મેં, કિસી કો શર્મિંદા કરને મેં, એસા સબ કાર્યો મેં વો એક્સપર્ટ હોતા હૈ તમોગુણી। ઓર આલસી, આલસી પડા રહેતા હૈ ગેંડે કી તરહ, કહી કુછ હોતે એક વ્યક્તિ સાહેબ જબ મેં એક હોસ્ટેલ મેં ગયા થા બજે, તો વહાં કે કુછ લડકે થે વો છુટ્ટી આતી હૈ 36 ઘંટા સોતા હૈ, અરે કેપેસિટી હૈ તુમ્હારી તો, મેં કહ્યું કરતે ક્યા હો તુમ, મીન્સ 36 ઘંટા નોન સ્ટોપ હોતા હૈ કૈસે હોતા હૈ સોને કે લિયે, તો બોલતા હૈ નહીં પાણી પીને કે લિયે ઉઠતા હું, પાણી પીને કે લિયે ઉઠતા હું ઓર કભી બહોત ભૂખ લગતી હૈ કુછ ખા ભી લેતા હું ફિર વાપસ સો જાતા હું, સો એસે કુછ આલસી હોતે હૈ। ઓર જૈસે આપ દેખતે હો આજકલ જો કલ્ચર હૈ વો બહોત ડિગ્રેડ હો રહા હૈ દિન બ દિન, રાઈટ, અગર આપકે પાસ ધન હૈ તો અગર આપ જલ્દી ઉઠ જાતે હો તો લોગ સોચને લગેંગે અચ્છા ધનવાન વ્યક્તિ જલ્દી ઉઠ ગયા, એસે અચ્છે લોગ હોતે હૈ લેકિન બહોત સારે અધિકતર લોગ જો લેટ ઉઠને વાલે હોતે હૈ, 10 બજે તો ઉનકા સ્નાન હોતા હૈ, 11 બજે સ્નાન હોતા હૈ, સુબહ 12 બજે સ્નાન હોતા હૈ, રાત કો 1-2 બજે સે પહેલે તો સોતે નહીં હૈ। મેં દેખા અક્સર કઈ વાર દેખતા હું કઈ વાર ભક્તો કો ભી આદત હો જાતી હૈ, હાલાકિ ભક્ત હોતા હૈ ડિવોટી હોતા હૈ લેકિન બહોત લેટ લેટ તક સો ડકતા હૈ રાત કો, બહોત લેટ લેટ તક સોતા હૈ દિન મેં, ઓર સાથ સાથ મેં आलसी तो होता ही है, खिन्न रहता है, खिन्न रहता है, व्यग्र मोरस एकदम, गुस्सा नहीं होता उसको, वो पड़ा रहेगा। उसको कुछ भी बोलो तो उसमें कोई गुस्सा ही नहीं दिखेगा, उसको देख के आपका गुस्सा भी मर जाएगा। ऐसा खिन्न रहता है वो। एक बार एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक लेक्चर दे रहे थे, तो एक डिवोटी उनके पास आए, उन्होंने कहा कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं। उसने प्रश्न पूछा, तो जो प्रभु जी थे उन्होंने कहा कि आपका बुक, आपका चेहरा देख के कोई बुक नहीं लेगा। आपके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई उत्साह ही नहीं है, तो वो कैसे लेगा बुक आपसे बुक। सो जैसे इवन लेक्चर में भी, अगर आप प्रवचन दे रहे हो और प्रवचन के समय पे आप समाधि में स्थिर होकर के बोल रहे हो, आंखें बंद करके बोल रहे हो, और आपके टोन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, आप सारा टेक्निकल बात बताते हो, शायद वो आंखें खोले तो एक दो लोग बैठे होंगे, बाकी सब चले गए। कोई बैठा नहीं होगा उधर, ये स्वाभाविक है। दिस इज ए कॉमन चीज है ये। तो
प्रभुपाद बता रहे थे कि मतलब जो लोग हैं, दे डोंट बाय बुक्स, वो लोग भक्त के उत्साह को देखते हैं, दे बाय डिवोटीज।
ऑब्वियसली इवन कोई भी सेवा, अगर आप समझ लो लेक्चर दे रहे हो तो उसमें आपको उत्साह होना चाहिए, तो आप सामने वाले को इसका असर होता है सुनने में। उत्साह नहीं है तो क्या प्रचार करोगे आप। इवन कीर्तन में भी, कीर्तन गाने वाला होता है उसको पता है, वो बार बार घड़ी देखता है, कितना टाइम बचा, कितना टाइम बचा, अब कितने कब खत्म करना है, वो क्या कीर्तन गाएगा। तो इसलिए हर एक कार्य में उत्साह होना चाहिए, तो वो खिन्न रहता। और दीर्घ सूत्री, हिंदी में लिखा है दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री प्रोक्रेस्टिनेटिंग मीन्स, जो कार्य एक घंटे में हो सकता है वो कार्य 10 घंटे तक करता है। जैसे आप सरकारी ऑफिसर्स ऑफिसेस में जाते हो ना, तो वहां के सब आदति होते हैं इस कार्य से। सरकारी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि उन सबको पता होता है कि ये कार्य एक घंटे में हो सकता है, लेकिन वो एक घंटे के बदले उनको पता है कि इसको पूरे दिन में कैसे किया जाए, तो पूरा दिन चलाते वो कार्य। अभी मुझे कोई बता रहा था कि कौन सी कंपनी थी, सरकारी कंपनी BSNL, उसके कुछ हजारों एम्प्लॉयज, 72,000 एम्प्लॉयज समथिंग लाइक दैट, एक साथ अभी उनको निकाला, राइट right? या वो खुद निकल गए, वॉट एवर, तो निकाला। तो मैं सोच रहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे इतना बैड रेपुटेशन है एम्प्लॉयज का कि उनको कोई कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा,
नहीं करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लॉइट उनका आधा सैलरी देंगे ऐसे।
ये दिस इज द सिचुएशन, ये ऐसा ही होगा। ये प्रोक्रेस्टिनेट डिवोटीज में भी ऐसा होता है। डिवोटीज में कैसे करते हैं कि जो काम एक दिन में हो सकता है वो काम एक एक महीने तक नहीं होता है। हाँ मैं कल कर दूंगा, बस परसों कर लूंगा, अभी आज नहीं कल करूंगा। तो ऐसा हमारे अपने लाइफ में भी होता है कई बार कि आज ये हो सकता है, ये मैं आज कर सकता था लेकिन आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। क्यों? बस आज मूड नहीं है
क्या? मेरा भी ऐसा ही हुआ। सैटरडे को ये प्रभु का फोन आया कि आप वेदांत में से ये क्वेश्चन आंसर के ले लेना। तो मैं गया, मेरे रिसेस गिरी तो 1 बजे में गया। मैम को बोला मैंने कि अभी तैयार कर दो ना, तो बोले मेरी अभी रिसेस गिर गई है, आप थोड़ी देर बैठो। मैंने बोला 2 बजे मेरी रिसेस पूरी हो जाएगी। मैंने बोला मैं अभी निकल रहा हूँ, मेरा अभी प्रसाद लेना बाकी है। मैंने बोला 5 बजे मेरी बच्ची वहां पढ़ती है, तो उसकी मम्मी आएगी, उनको दे देना। तो मेरी बच्ची की मम्मी गई ना,
तो उनको भी बोला 15 मिनट बैठो, मैं अभी कर देती हूँ।
हाँ तो ऐसा हो,
बोलो 5 बजे तैयार किया।
ये होता है ऐसा सरकारी काम में, या ऐसे होता ही है। वो क्या करते हैं, आपको काम उसको देते हो, मैं कई बार देता है काम देते हो ना, तो एक माइंड सेट होता है कि उसको पहले बंद करके एक बार साइड में रख देना चाहता है।
एक्चुअली ब्रो मैंने भी देखा है ये कि वो लोग अगर आप इमीडिएटली करके, तो आप बहुत खाली है तो फ्री है, तुरंत हाँ। कर दिया, बिजी लगना चाहिए कि मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर के बाद करके हाँ। दूंगा, वो खाली फ्री होता है फिर भी नहीं करता
है। यस, ये आदत है उनके। इसे जैसे अमेरिका में सिस्टम नहीं चल रहा है अधिकतर, ऐसा नहीं कि वहां लोग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होते, वहां भी आलसी लोग भरे पड़े हैं, लेकिन जैसे सिस्टम, जैसे आप समझ लो कि कंप्यूटर आप सर्विस सेंटर में लेके जाते हो, तो वहां पर जनरली यहाँ पर देखते हैं क्या कि उसको बोलते आप साइड में रख दो, और लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है ऑन द स्पॉट इंस्टेंट हो जाता है। पांच मिनट का काम होता है, इसलिए भक्त जो होते हैं वो आलसी नहीं होते, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हर एक चीज को, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, छोटा सा काम होता है लेकिन बहुत बड़ा बना रहते हैं। इवन भक्तों में भी ये देखा जाता है, आप फोन करेंगे तो उठाएंगे नहीं, फिर सामने से फोन करेंगे आपको, सॉरी प्रभु मैं बिजी था, ये मेरे सामने हुआ है, कुछ नहीं, फोन आया वो आराम से बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, 15 मिनट के बाद फोन करके रिप्लाई करता है सामने, सॉरी प्रभु मैं बिजी था, कुछ नहीं कर रहा था वो। तो इस प्रकार की जो आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करना, तो वो भक्तों के लिए उचित नहीं होता है, ये कलयुग का लक्षण है विशेष करके, और तमोगुण का लक्षण है, आलसी होते हैं। प्रभुपाद ने तो स्पष्ट रूप से बताया, काम 1 घंटा हो सकता है उसे वर्षों तक घसीटते जा रहे, वर्षों तक घसीटते। कई बार भारतीयों के विषय में प्रभुपाद एक बार कहा भी था कि जब तक इंडियन मेंटालिटी के अनुसार, जब तक उसके सिर के ऊपर उस वो कार्य को फेंका नहीं जाता, थोपा नहीं जाता, उसको डेडलाइन नहीं दी जाती, तब तक वो हिलेगा भी नहीं, वॉन्ट इवन मूव। तो इसलिए दिस इज तमोगुण, तमोगुण का यह प्रभाव होता है। Yes, so we can have text number. Yes, question.
नहीं ब्रो, एक yes. आपने बताया ना कीर्तन के बारे में हाँ. तो मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2012 में जब मैं नया जुड़ा था, तो मैं प्राग में था, तो वहाँ पे इवनिंग को हरिनाम होता था नगर संकीर्तन, उसके बाद गोविंद दास में लेक्चर होता था, और गुरु महाराज वहाँ पे आए थे उस टाइम पे हाँ. उस टाइम पे मैं मुझे पता नहीं था कि मैं उनकी शरण ग्रहण करूंगा, तो उन्होंने कुछ 1 घंटा कीर्तन किया, मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे लगा कीर्तन अभी खत्म होगा तो प्रसाद शुरू होगा, तो 1 घंटा कीर्तन किया, फिर उनका ऐसा था कि वो टेम्पो एकदम स्लो कर देते, मुझे लगा अभी खत्म हो जाएगा, वापिस शुरू कर देते। ऐसा 3-4 बार हुआ, तो मैं सोचा था कि मतलब मजा, सब लोग हवा में थे, सब कूद रहे थे, नाच रहे थे, और फिर ऐसा 2 घंटा चला कंटिन्यूस कीर्तन एकदम जबरदस्त, और फिर लास्ट में जब उन्होंने खत्म किया, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, तब मुझे लग रहा था कि कैसा है, बट इट वॉज लाइक दिस।
यस, सो मच एंथुसियाज्म, सो मच उत्साह, तो ये रिक्वायर है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हमारा उत्साह जैसे कमजोर हुआ, मानो कि आपके कृष्ण भक्ति की प्रगति धीरे पड़ गई, जैसे ही उत्साह कमजोर हुआ तो। सो अभी 3 प्रकार के कर्ता हुआ, अब 3 प्रकार के बुद्धि और धृति के विषय में भगवान बताएंगे। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 29।
पिता पुत्र वह बुद्धि
नहीं
29
धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो।
तात्पर्य
ज्ञान विनय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3-3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता को बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं।
बुद्धि और संकल्प ये दो विषय के विषय में प्रभुपाद भगवान बताएंगे अभी। सो या वी कैन गो विद द टेक्स्ट नंबर 30, 31, 32 तीनों प्रकार के परपट है ना इसका। ठीक है, एक एक पढ़ो।
ये प्रथा पुत्र वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य, शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बन जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है।
बुद्धि का काम होता है भेद करना, डिस्क्रिमिनेट करना। और जब ये बुद्धि कृष्ण भावनामृत के लिए उपयोग की जाती है तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयावह, वो इसको समझ सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए। भक्त को पता है कि करना क्या है क्या नहीं करना और किससे डरना है। भक्त किससे नहीं डरता? कष्ट से नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता, शत्रु से नहीं डरता। भक्त किसी चीज से नहीं डरता, वो केवल अपने पतन से डरता है। वो अपने पतन से डरता है, वो भगवान को भूलने से डरता है, अपराध से डरता है। तो इस प्रकार से वो उसको डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए। उसको यमराज का कोई डर नहीं होता। और वास्तव में यमराज, शत्रु, भूत, पिशाच ये उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भक्तों को इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल निर्भय होता है वो। फिर क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है ये भी उसको पता होता है। अर्थात उसको पता है कि अगर मैं किसी हिरण के बच्चे में मन लगाऊंगा तो ये मुझे बांध सकता है, जैसे भरत महाराज का उदाहरण। तो उसको पता है कि ये बंधन करता है। किसी भी व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा अगर आपका आसक्ति हो या अट्रैक्शन हो तो आप समझ लेना कि ये आपको सुधार की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा का अर्थ क्या होता है कि एनीथिंग गोइंग बियॉन्ड द नॉर्मल इज नॉट वेलकम। प्रीति आसक्ति केवल वैष्णव या गुरु के प्रति होनी चाहिए, बाकी सब लोगों के प्रति प्रीति या आसक्ति जो होती है, हो सकता है कि बच्चे के परिवार के सब लोगों के प्रति हमारी होती है, लेकिन वो भी जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो अगर वो भक्त नहीं है तो ये हमारे लिए संकट का प्रॉब्लम समस्या है। तो इसलिए वो पता है कि क्या बांधने वाला है, मुक्ति देने वाला क्या है। भक्तों में आसक्ति, गुरु में आसक्ति, हरिनाम में आसक्ति, ये मुक्ति देने वाला है तो इसके प्रति आसक्ति होना चाहिए। तो ये जानता है कि किसमें आसक्ति करना चाहिए किसमें आसक्ति नहीं करना चाहिए। ऐसी बुद्धि सात्विक है।
तो भक्तों के संग में आसक्ति होनी चाहिए या भक्तों
होना चाहिए? होना चाहिए, संग में भी आसक्ति होनी चाहिए।
मतलब
भक्त मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन उनके साथ, जैसे किसी को कृष्ण कथा की आसक्ति है फॉर एग्जाम्पल, तो उनको उनके लिए तो कैसा है कि आप बता सकते हो आप बता दो, अगर आप बता सकते हो तो आप बता दो, कोई भी बताओ लेकिन मुझे बताओ कृष्ण के विषय में कुछ, लाइक दैट। तो दैट इज फाइन, दैट इज वेलकम। लेकिन समझ लो कि मेरा एक कोई स्कूल फ्रेंड है, स्कूल का एक मित्र है, मैं सब कुछ करता हूँ, भक्ति भक्ति सब करता हूँ, लेकिन फिर भी वो जब भी मुझे बोलता है कि यार आज थोड़ा एक दो घंटा मेरे लिए निकाल, तो मैं मना नहीं करता और उसके एक दो घंटा निकालता हूँ। और फिर वो जो बोलता है, बोले आज थोड़ा रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं, ये करते वो करते, और वो मैं सबको हाँ बोल देता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे उसके प्रति आसक्ति है। तो वो आसक्ति बंधन करता है, मुझे पता है कि उससे बंधन होने वाला। तो सात्विक की बुद्धि ये नहीं सोचती, सात्विक की बुद्धि पता पड़ जाता है कि ये बंधन करने वाला है, इसलिए वो पहले से धीरे 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 वो आसक्ति को हटाता है। उसको लगे मुझे लॉस हो रहा है, उसको पता है कि लॉस कहाँ है और गेन कहाँ है, ही नोज दैट।
मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि जैसे मतलब जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद को ज्यादा सुनना चाहिए, उसके बाद अपने गुरु महाराज को, और उसके बाद बाकी वैष्णवों को.
yes.
तो मतलब मगर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे यूट्यूब पे या बाकी बहुत सारे ऐसे सीनियर डिवोटीज है संस्था के जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनके वीडियोज अगर ज्यादा देखें और उनसे अगर वो बहुत अच्छी तरह से मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो क्या ये सही है?
उसमें कोई समस्या नहीं है. वो एक 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 प्रकार का साधन है, टूल्स है. जनरली ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जिसको इंटरनेट पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, इस्कॉन के डिवोटी, तो वो लोग रिसर्च वर्क करके सिस्टमेटिकली उसको प्रेजेंट करते. तो अगर एक रूप से देखा जाए तो हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, वो अच्छा सेवा कर रहे, अच्छा प्रचार कर रहे. लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कोई सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन या उनको कोई मोटिवेशनल स्पीकर के लिए अपने आप को आगे नहीं लगा. वो जो बोलते थे वो अपने आप सिस्टमेटिक बन जाता था. कहने का तात्पर्य यह है. और दूसरा एक सैद्धांतिक कारण ये भी है कि व्यक्ति की पवित्रता ज्यादा असर करती है टेक्निक से. कोई टेक्निक का उपयोग करता है वो अच्छी बात है, लेकिन पवित्रता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. अगर कोई पवित्र भक्त है, कोई सन्यासी गुरु है, हो सकता है कि वो इतना एक्सपर्ट प्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी को बोलेगा कि रोज हरे कृष्ण मंत्र का एक माला जप करो तो वो व्यक्ति शुरू कर देगा. लेकिन वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होंगे और उनकी पवित्रता में अगर कमी होगी तो कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे टेक्निकली और बहुत फैंटास्टिकली एकदम प्रेजेंट करेंगे, फिर भी वो माला का जप नहीं करवा पाएगा. लोग तालियां बजाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अवार्ड देंगे, सब करेंगे, लेकिन वो किसी का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाएगा. सो लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स वी शुड लिसन, बट द मेन प्रिंसिपल इज नॉट द प्रेजेंटेशन, मेन प्रिंसिपल इज प्योरिटी. प्योरिटी इज द फोर्स. प्रभुपाद से यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल बट प्योरिटी इज द फोर्स. यस, टेक्स्ट नंबर 31. अब राजसी.
हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती तो राजसी है.
हाँ, तो जिसमें करना चाहिए भेद उसमें नहीं करता है, और जिसमें नहीं करना चाहिए उसमें करता है. तो ये ऐसी सब चीजों में भेद करना चाहिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसमें भेद करना चाहिए. लेकिन उसमें वो भेद नहीं कर पाता. उसके सामने अगर दोनों चीज रखी होती है तो उसके लिए दोनों एक समान लगती है, वो उसको भेद नहीं कर पाता है. और कर्म में भी भेद नहीं कर पाता कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, वो समझ नहीं पाता, कंफ्यूज. और फिर क्या होता है, वो अपने विम्सिकल डिसीजंस लेता है. विम्सिकल डिसीजंस लग गया तो तीर, नहीं तो इस तरह से वो काम करता है. तो ऐसी बुद्धि राजसी होती है. और तामसी.
जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदा विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार, वो तामसी है.
तात्पर्य.
तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है. ये उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है. अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं. वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं. वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है.
सब कुछ जब मैं छोटा था तो भगवद गीता में जब मैं पढ़ता था तो मुझे इतना पता नहीं पड़ता था. बहुत छोटा था, 14 साल की उम्र में, 8वीं-9वीं कक्षा में भगवद गीता पढ़ता था. तो जब ये इस प्रकार के जो चैप्टर आता था पढ़ने में, तो जैसे ही तामसी शब्द आता था तो मेरे माइंड में मैंने फॉर्मूला लगा दिया था, जब भी कुछ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो दैट इज तामसी. मीन्स जो करना चाहिए उससे सब कुछ विपरीत ही करता है वो. जैसे अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है. जो करना चाहिए, जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद को असुर बताता था कि मेरे घर में असुर का जन्म हुआ है, तो तुझमें असुरी बुद्धि कहां से आई, ऐसे अधर्म युक्त विचार कैसे करते. यद्यपि वो असुर था और प्रहलाद को कहता था कि तू इतना दुष्ट असुर कैसे हो गया, ऐसे अधर्म वाला क्यों सोचता है। यदि भी पूरा ऑपोजिट था, धर्म को अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है और विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में। शास्त्र कहते हैं कम से कम दिन में 2 बार या 3 बार स्नान करो और वो स्नान करने को वर्जित बना दे, स्नान करना वर्जित है। शास्त्र कहते हैं कि शरीर को कष्ट मत दो और वो नोच नोच के बाल निकालता है। तो ये तामसी बुद्धि है, इस बुद्धि को तामसी कहा गया है। सो श्री प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में कि जो लोग तमोगुण में इन्वॉल्व है, तमोगुण की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, वो लोग क्या करते हैं, तमोगुणी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पशुओं की हत्या करते हैं विशेष करके। जैसे आप ये आपका चाइना में जो वायरस स्प्रेड हुआ
कोरोना,
वो कितनी हद से वो लोग पाप में गए हैं, मिस उसकी कोई कल्पना नहीं है कि वहां की जो भूमि भी कैसे सहन करेगी ऐसे लोग का बोझा, जिंदा पशुओं को खत्म कर देते हैं। Somebody shared the video, वो वायरल हो रही है वीडियो, तो वीडियो में दिखाया गया है कि कितनी बुरी तरह से उन लोग का कोई पत्थर से पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाए, ऐसा निर्दयी वो लोग होते हैं। तो ये तामसी बुद्धि का प्रमाण है, इसे कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यहाँ पर बताया है कि जो सही में धर्म को जानता है वो कभी भी पशु के वध को स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म ना भी हो, सनातन धर्म ना भी हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन पशु की हत्या को कोई सज्जन व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, तामसी माना जाएगा। नहीं तो जैसे कहां पर एक जगह होता था, ये कुछ हजारों पशुओं के एक साथ हत्या होती,
नेपाल
में एक ही दिन में,
दशहरा वाले
एक ही दिन,
सबसे बड़ा समारोह ही होता है ना।
अब तो बंद हो गया ना, बंद हो गया।
अनफॉर्चुनेटली उस दिन में वही था, नेपाल में अभी भी होता है, बट वहाँ तो प्रभु जी चौराहे सब पूरे खून सरेंगे होते
हैं। अरे वो बंद कर दिया, प्रतिबंध हो गया उसके ऊपर शायद, मैं ऐसे सुनने में आया था, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज।
11-12 तक तो था,
जो कि हिंदू राष्ट्र है, राइट? सरप्राइजिंग,
लेकिन वो
बहुत ही
एक दो देवी जगन्य, मतलब इतना चलाते हैं कि सीढ़ियों से खून बहता है।
ये मैंने फोटोज वगैरह सब देखे थे, सड़क पे आ जाते सब
दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मैं तो गया नहीं।
तो ऐसे प्रभुपाद से वो तात्पर्य में कहते हैं कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे मिशनरी वर्कर है जो धर्म के नाम पे बड़ा बड़ा मिशन बनाते हैं, लेकिन वो लोग पशु हिंसा को प्रमोट करते हैं और या फिर पशु हिंसा को मना नहीं करते, रोकते नहीं है। तो और जैसे आजकल भी कोई बड़े बाबा है, वो बड़ी सेलिब्रिटी बने हुए है मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर का बोलबाला है, कहीं पर भी जाओ इंटरनेट में, सब जगह सोशल मीडिया में, तो उनके कई अनुयायी है और वो व्यक्ति खुद भी मांस खाता है और दूसरे को मांस खाने से रोकता भी नहीं है और वो धर्म का गुरु बन के बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या किसी को सिंह सिखाएगा, इसलिए वो तमोगुणी व्यक्ति माना जाता है, तमोगुणी बुद्धि है उसकी। तो इस तरह से बुद्धि और उसके बाद फिर आता है धृति। धृति का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन। यस, पढ़िए।
हे पृथा पुत्र, जे अकूट छे, जेने योगाभ्यास द्वारा अचल रहीने धारण कराय छे, अने ए रीते ज मन प्राण तथा इंद्रियों ना कार्य ने નિયંત્રણ માં રાખે છે તે ધૃતિ સાત્વિક કહેવાય છે. યોગ પરમાત્મા ને જાણવાનું સાધન છે. જે મનુષ્ય નિશ્ચયપૂર્વક મન પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોને એકાગ્ર ચિત્તે પરમાત્મામાં પોરવીને દ્રઢતાપૂર્વક તેમાં સ્થિર રહે છે તે જ કૃષ્ણ ભાવનામાં તત્પર હોય છે. આવી ધૃતિ સાત્વિક હોય છે. અવ્યભિચારીણ્ય શબ્દ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે એવું સૂચવે છે કે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ ભક્તો કદાપિ કોઈ અન્ય કાર્ય દ્વારા વિચલિત થતા નથી.
ધૃતિ શબ્દ કા અર્થ હોતા હૈ સંકલ્પ યા દૃઢ સંકલ્પ, અર્થાત જબ બુદ્ધિ કિસી ચીજ કો ડિસાઇડ કરતી હૈ ક્યા કરના ચાહિએ ક્યા નહીં કરના ચાહિએ, વો ડિસાઇડ હો જાતા હૈ, ઉસકે બાદ ઉસ પર્ટિક્યુલર ડિસિઝન કો પકડ કે રખના, ઇસકો ધૃતિ કહેતે હૈ. બુદ્ધિ કે બાદ આતા હૈ ધૃતિ. મીન્સ મેં અગર સમજ લિયા કે હરિનામ કા ઉચ્ચારણ કરના, કૃષ્ણ ભક્તિ મેં જુડના યા ભગવાન કી સેવા કરના, યહી વાસ્તવ મેં ધર્મ હૈ, યહી મુજે કાર્ય કરના ચાહિએ, તો વો યે મેરા ડિસિઝન હુઆ જે મેને બુદ્ધિ કા પ્રયોગ કિયા, લેકિન ઉસ કાર્ય કો કસ કે પકડ કે રખના, ઉસકો ધૃતિ કહેતે હૈ. સો યહાં પર કહા ગયા કે મન પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયો કે કાર્યકલાપો કો વશ મેં રખ સકતી હૈ, ઉસકો ધૃતિ, વો સાત્વિક કી ધૃતિ હૈ અથવા સંકલ્પ હૈ. ઓર પ્રભુપાદ લાસ્ટ લાઇન મેં તાત્પર્ય મેં ક્યા કહેતે હૈ, કૃષ્ણ ભાવના મેં તત્પર મનુષ્ય કભી કિસી દૂસરે કાર્ય દ્વારા વિચલિત નહીં હોતા, વો ઉસકો વિચલિત નહીં કિયા જા સકતા. દિસ ઇઝ લાઇક જૈસે હરિદાસ ઠાકુર, હરિદાસ ઠાકુર કે પતન કરને કે લીએ વહાં કે જો રાજા થે નવાબ યા ઉસને વેશ્યા કો ભેજા થા, ઓર હાલાકિ એસા કિસી કો કોઈ ઓર તો કરી નહીં સકતા, યે હરિદાસ ઠાકુર હી કર સકતે. હરિદાસ ઠાકુર કે સામને વો વેશ્યા પૂરા રાત બેઠી, પૂરા રાત, और हरिदास ठाकुर पूरा रात चैंटिंग करते रहे. आसपास में कोई नहीं था, अकेले थे, वातावरण भी अनुकूल था, लेकिन फिर भी वो पूरा रात चैंटिंग करते रहे और उनका हृदय में कोई परिवर्तन, माया के प्रति कोई आकर्षण नहीं हुआ. तो ये धृति है. वो कुछ भी, जैसे हरिदास ठाकुर को जब कहा गया कि तुम हरिनाम को छोड़ दो, वहां का जो नवाब था उसने कहा कि तुम्हारे पास सब हिंदू लोग, बहुत सारे मुसलमान लोग आते हैं और तुम उसको हरिनाम देते हो, उसको हिंदू बना देते हो, और हम सब हिंदुओं को मार मार के मियां बनाते, तो तुम ये उल्टा काम क्यों करते हो, तुम हमारे धर्म में जन्म लिया है तुमने इस्लाम में, और तुम इतने भाग्यशाली हो તો તમ અલ્લાહ કા ગુણગાન ગાઓ, તમે દૂસરે ધર્મ કો ક્યો સ્વીકાર કરતે હો. ઇસ તરહ સે ઉસકો સમજાયા હરિદાસ ઠાકુર કો. હરિદાસ ઠાકુર ને કહા તુમ હજારો લોગો કો હિન્દુઓ કો માર કે મિયાં બનાતા હૈ, મેં કિસી કોને મેં બેઠા, પાંચ સાત લોગ અગર આતે હૈ મેરે પાસ, ઓર અગર વો લોગ મુસલમાન છોડ કે હિન્દુ બન જાતે, તો ઇસમે કહાં કોઈ નુકસાન હો જાતા હૈ. એસી ચીજ કો ક્યા સોચને કા, નહીં બોલે એસા નહીં, તુમ યે પ્રચાર બંધ કર દો. તો હરિદાસ ઠાકુર ને કહા કે દેખો તુમ બોલો તો મેં તુમ્હારી જગા છોડ કે ચલા જાતા હું, યે રાત છોડ કે ચલા જાતા હું, મેં તુમ્હે પરેશાન નહીં કરૂંગા, મુજે તુમ્હે દુખી કરને કા કોઈ ઈચ્છા નહીં હૈ, અગર તુમ ચાહતે હો કે મેં યહાં સે ચલા જાઉં તો મેં ચલા જાઉંગા, ઉસમે ક્યા હૈ. બોલે નહીં, લેકિન તુમ પ્રચાર નહીં કરોગે. બોલે વો સંભવ નહીં હૈ, બોલે તુમ હરિનામ છોડ દો, યે હરિનામ જપ કરના છોડ દો. બોલે વો નહીં હો સકતા હૈ, તો અલગ તુમ હરિનામ નહીં છોડોગે તો મેં તુમે બંદી બના દૂંગા, બના લો બંદી બના લો. તો હરિદાસ ઠાકુર ને કહા કે અગર મેરે શરીર કે આપ સેંકડો ટુકડો કર દોગે, હજાર હજાર ટુકડે કર દોગે, તો હરેક શરીર કા હરેક ટુકડા જોર જોર સે હરિનામ ગાયેગા, મેરા એક એક ટુકડા હરિનામ ગાયેગા શરીર કા, इसलिए हरिनाम तो नहीं, इसको बोलते धृति। चाहे प्रभुपाद की हजार परीक्षा हो जाए, प्रभुपाद को अटैक आ गए, फेल हो गए, एक साल में हर दो महीने प्रभुपाद जाते थे, एक साल अमेरिका में जब थे 1965 से 1966 तक, एक साल में हर दो महीने में प्रभुपाद जाते थे शिपिंग कंपनी के पास, मैनेजर को कहते थे कि नेक्स्ट कौन सा इंडिया जाने वाला है शिप, और वो भी कब, किसी मैनेजर ने पूछा उस समय कि स्वामी जी आप बार बार आते हो पूछते हो लेकिन जाते तो हो नहीं कभी इंडिया, फिर आप क्यों पूछते हो, तो बोले मैं जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तब मैं तुम्हारे पास आता हूँ और फिर इंडिया जाने का सोचता हूँ। आप सोचिए प्रभुपाद उस लेवल पे थे और वो कह रहे कि मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, प्रभुपाद फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, निराश हो रहे थे बहुत, तो आप सोचो कि कैसी सिचुएशन होगी। और सब प्रकार का उनका खाना एक सेम फ्रिज में रहता था, जिस फ्रिज में नॉनवेज भी रहता था, तो ऐसी ऐसी कई ऐसी चीजों से गुजरे। किसी ने एक बार तो किसी ने उनको उन पर हत्या का अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो ऐसे कई सिचुएशंस को सहन करते करते धृति बड़ी स्ट्रांग थी उनकी, मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कर करूं, मैं फिर से दो महीना प्रयास करता हूँ शायद हो गया तो पैसा, क्योंकि आप सोचिए कौन देगा बाद में उनको अमेरिका का वीजा, कौन को टिकट करके देगा, कोई ये भी तो कह सकता है कि स्वामी जी एक बार तो जाके आए, कुछ हुआ तो नहीं, अब क्या जाके करोगे, अब वृंदावन में बैठो भजन करो। इसलिए प्रभुपाद ने इस तक को जाने नहीं देना चाहते थे, तो वहां बार बार जाते, ये धृति सात्विक की धृति है। अब प्रिय राजसी धृति,
लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वो राजसी
तात्पर्य पड़े।
जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्य में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, इसकी एकमात्र इच्छा इंद्र तृप्ति होती है, तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है वही रजोगुणी होता है।
उसकी धृति ऐसी होती है रजोगुणी की, उसके पास एकदम स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है, बिलीफ है या स्ट्रांग डिसीजन है उसका कि जब तक उसको कोई इंद्र तृप्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक वो किसी भी सौदे को स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी कार्य करने के पहले वो स्ट्रांग उसको उसके पीछे देखेगा कि कहां पर मुझे धर्म अर्थ काम के फल कहां प्राप्त हो सकते हैं, उसमें लिप्त बना रहता है। वो दान भी देगा, पुण्य कर्म भी करेगा, लेकिन उसको लाभ की इच्छा होती है हमेशा, और विशेष करके इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है, तो वो उसमें स्ट्रांग रूप से, आप देखा ना वर्कहॉलिक, उसको बोलते धृति, मीन्स वो इतना स्ट्रांग है कि वो ओवर टाइम करेगा तो उसको अच्छा लगता है, ही फील्स गुड, उसको धक्के मार के निकालना पड़ता है, आप निकलो ऑफिस से बाहर, इस प्रकार का होते हैं धृति राजसी है, तामसी धृति।
हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य, इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सत्वगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं।
तो प्रभुपाद जी यहाँ सपनों को लेकर के बताया कि अधिक सोना, बहुत ज्यादा सोना, मैं वो डिटरमिन होता है, 36 घंटे वाला था ना, वो डिटरमिन होता है, मैं उसको जगाओ फिर भी सो सकता है फिर से, तो वो डिटरमिन होता है, वो अधिक सोने से नहीं बचा पाते। और अगर वो तो एक्सट्रीम है, समझ लो भक्त लोग में भी, अगर उसको भक्त स्वस्थ शरीर वाला भक्त है, उसको 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर उसको एक दो घंटा, आठ घंटा, नौ घंटा हो जाता है तो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है उससे, उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। इसको तामसी धृति कहते हैं, तामसी धृति, अर्थात उसकी अगर धृति, जो पहले जो सतोगुणी धृति की बात की थी हमने, उसमें हमने क्या सोचा कि जो अच्छी कार्य है उसको समझता है कि अगर सात घंटा सोना चाहिए या छह घंटा या सात घंटा सोना चाहिए, तो सात सात के ऊपर समय जाने से वो अपने आप उसको पता पड़ता है। या अगर समझ लो अलार्म बज रहा है तो वो अलार्म बंद नहीं करेगा, उसको पता है कि अब ये उठने का टाइम हो गया है, अब मुझे उठना चाहिए, उसको पता है। तो अधिक सोने से बचा लेता है अपने आप को। फिर भौतिक वस्तुओं को भोगने से, भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते अपने आप को। जैसे वो देखा होगा आपने कोई बॉडी रेंज रोवर या फिर मर्सिडीज, जैसे कोई बड़ी गाड़ी होती है तो वो स्वाभाविक रूप से उसको अभिमान होता है उस चीज का, मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, होता है ऐसा, हुआ था एक बार हमारे विष्णुराम प्रभु भैया के साथ। कोई कोई रीजन है, बस मेरा ओवरटेक क्यों किया, दिस वॉज द रीजन, उसके लिए भाई साहब लड़ने को तैयार हो गए। अभिमान होता है, अभिमान। सो ऐसे लोग अपने आप को बचा नहीं पाते, सब हमेशा प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते हैं कि इसको वश में किया, उसको वश में किया, उसको वश में किया, सब मेरे अंदर में आ गए, सब मेरे कंट्रोल में आ गए, देखा। अब है तीन प्रकार के सुख। यस,
वो जैसे ये ध्रुति का मतलब आपने बताया दृढ़ संकल्प, तो ये इंटरचेंज हो सकती है तामसी राजसी में या सात्विक तामसी में से?
अपने अपने डिसीजन के आधार पर बुद्धि को फॉलो करती है धृति। बुद्धि ने जो डिसीजंस लिया है उस डिसीजंस को पकड़ के रखना, कई बार डिसीजंस को पकड़ के नहीं रखना तो उसकी धृति कमजोर होती है। इसका अर्थ तो हो सकता है कि वो बुद्धि चाहे उसकी रजोगुणी हो लेकिन उसकी धृति रजोगुणी इतनी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है।
पिछले अध्याय में आपने बताया था कि ये तमोगुण कभी दबा के रजोगुण को दबा के
एक प्योर गुण कभी नहीं आता है,
आपस में एक दूसरे को दबाते रहते हैं।
यस यस, जनरली आप हम इस प्रकार से हमारी रचना है कि जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता तब तक वो तीन गुणों में से किसी एक गुण को पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि वो उस पर कुछ अगर एक ग्लास है तो आधा ग्लास रजोगुण है, दो चम्मच तमोगुण है, तीन चम्मच रजोगुण सतोगुण है, ऐसे एक साथ 100% एक नहीं होता है।
डायनामिक स्टेट है,
मतलब यस
डायनामिक स्टेट
है, इट्स ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग।
उसे कहते नहीं कि रजोगुण कभी बढ़ता है तो सतोगुण को दबा देता है,
yes.
कभी तमोगुण बढ़ता है रजोगुण को दबा देता है, yes. पिछले अध्याय में बताया था मुझे।
यस yes, सही बात है, ऐसा ही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है दिन एक ही घंटे के अंदर या एक ही पांच मिनट के अंदर, एक ही मिनट के अंदर कोई व्यक्ति एक साथ तीनों चीज को प्रकट करे, सत्वगुण भी बताए, रजोगुण भी बताए, तमोगुण भी बताए, ये सब एक साथ हो सकता है। या कभी एक ही ऐसा कार्य होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा तीनों होता है, थोड़ा सत्वगुण भी होता है, थोड़ा रजोगुण भी होता है, थोड़ा तमोगुण। या सुबह के समय में किया गया कार्य है, समझ लो अच्छा कार्य समय माना जाता है तो सतोगुण में किया, लेकिन कार्य ऐसा था कि जिसमें लाभ की इच्छा से किया गया था तो रजोगुण ही बन गया, और कार्य और किसी को कष्ट देके किया था तो तमोगुण ही बन गया।
उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि हमें मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिकली जैसे 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम हमें कुछ न कुछ कृष्ण भावनाओं में स्पेंड करना चाहिए।
हाँ, तभी तभी आप तीन गुणों से पर जा सकते हो, नहीं तो तीन गुणों में फंस जाते हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण तक पहुंच जाओगे, वो बुरा नहीं है लेकिन बेस्ट नहीं है, बेस्ट है तीन गुणों से पर। ओके, तीन सुख।
हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है।
इस तात्पर्य पढ़िए।
बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वो चर्वित चर्वण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वो किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से ये समझ लेता है कि ये तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वो ऐसे तथा कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है।
तो ये हो सकता है जब कृष्ण भावनामृत के शरण में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो इस चबाई हुई चीजों को चबाने से फिर अपने आप को बचा लेता है। उसको पता पड़ गया, अभी तक क्या था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो थका हुआ था इंद्रिय भोग से। कई बार थक जाते लोग इंद्रिय भोग करते करते, लेकिन उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो घूम फिर के वहीं आ जाते फिर वापस। कब क्या करेगा फिर, इंद्रिय तृप्ति करेगा और क्या करेगा। बड़े बड़े अरबोंपति होते हैं लोग, उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं हो रही है। इंद्रिय इतना जी भर के इंद्रिय तृप्ति करता है वो, लेकिन थक जाता है भोग करते करते, अब क्या भोग करूंगा इसको बार 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 बार, लेकिन उसके पास कोई चॉइस है ही नहीं इसके अतिरिक्त, तो फिर वापस उसको शुरू कर देना है। अब सतोगुण से शुरू करते हैं।
हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत।
उसके नेक्स्ट वाला,
अच्छा इसके बाद, सॉरी रूप, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहना सत्वगुणी है।
उसके ऊपर
37
जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है।
तात्पर्य पढ़िए।
आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वो वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है।
तो प्रारंभ में विष जैसा और बाद में अमृत जैसा, जैसे सुबह 4:30 बजे उठना, तो प्रारंभ में विष जैसा, आपको उठने के टाइम पे ऐसा लगता है कि ये 4:30 क्यों बजते हैं रोज, या फिर ये मंगला आरती प्रभुपाद जी ने इतना जल्दी क्यों करवाया, विंटर में थोड़ा डिस्काउंट दिया होता तो। तो सारे सुबह ये शुरुआत में जैसे माला का जप करना, 16 माला फिर आ जाता है करते करते, कितना बचा, एक और है वो। तो 16 माला करने में कड़वा लगता है, विष जैसा लगता है। कथा सुनने के लिए बैठना, लेक्चर में 1 घंटा बैठना पड़ेगा, तो 1 घंटा वो कई बार होता है वो इधर उधर इधर उधर पता नहीं, वो उसके लिए 1 घंटा बैठना बहुत बड़ी तपस्या होती है कुछ लोग के लिए ना? या मोबाइल देखेंगे, किसी को नोटिस करेंगे, कपड़े से खेलेंगे या फिर हाथ में कुछ पकड़ के उसको खेला करेंगे, फिर किसी को ऑब्जर्व करता रहेगा, कोई एक्टिव कुछ दिया ऊपर पेड़ पर बैठे उसको देखा करेगा, कुछ ना कुछ तपस्या। वो प्रारंभ में उसको विष जैसा लगता है, बाद में फिर सिंपल, प्रभु मैं आता हूँ 2 मिनट में, बाथरूम के लिए चला जाएगा, गया तो लग जाट, तो इस तरह से भाग जाता है वो तपस्या, उसको विष जैसा लगता है कृष्ण भक्ति शुरू में, लेकिन बाद में उसको जब उसका स्वाद था पता, हो तो ये अमृत है, मैं कर क्या रहा था अभी तक। तो शुरू में विष जैसा होता है लेकिन बाद में अमृत जैसा लगता है, और आत्म साक्षात्कार को जगाता है, उसको शुद्ध करता है, ऐसा व्यक्ति सत्वगुण या रजोगुण ही पड़ी है।
जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है।
सत्वगुण में क्या होता है कि शुरू में आपको थोड़ा साधना तपस्या करना पड़ता है ना, उसमें आपको नियमों का पालन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तो वो सब शुरू में सत्वगुण में ऐसा होता है, लेकिन रजोगुण में क्या होता है, सब कुछ इंस्टेंट। हाँ, उसको अभी जो चाहिए वो अभी रुचिकर क्या है वो पहले करता है, अभी जो रुचिकर होता है वो पहले करता है। तो रजोगुण में क्या होता है कि पहले अमृत जैसा लगता है, वाह यू नो खाओ, जैसे पिज्जा खाओ, एक दो तीन चार खत्म, अब उसको एक और एक दो नहीं खा पाएगा। जैसे कोई कोई व्यक्ति है, अब उसने बहुत ज्यादा पकौड़े खा लिए है तो क्या होगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा तुम्हारा पेट खराब हो गया, दो दिन तक आप कुछ नहीं खा सकते, आप तो दो दिन तक खाना नहीं है, उस समय उसके पास पकौड़ा लेके जाओ। तो व्यक्ति देख के घबराएगा, नहीं उसको दूर रखो वो मत दो मुझे, उसने उसके कारण मुझे दो दिन का फास्टिंग आ गया मुफ्त का, फोकट का मुझे उपवास कर रहा हूँ। तो इसलिए ये रजोगुणी सुख जो होता है शुरू शुरू में विष जैसा होता है, सॉरी शुरू में अमृत जैसा होता है, अंत में विष जैसा होता है। जैसे आप तात्पर्य पढ़िए,
जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उसे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय के बाद वही विष्तुल्य बन जाता है, तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए।
स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पर कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री को देखता है, कोई युवक किसी युवती को देखता है तो स्वाभाविक रूप से उसको भोग करने का इच्छा करता है। वो उसको लगता है कि मैं तो स्वर्ग में घूम रहा हूँ, आसमान में। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ये शादी करेगा तो 2 साल का वेकेशन लेके चला जाता है, उसको लगता है कि अब संसार का सब सुख मुझे मिल गया। लेकिन उसके बाद फिर वो वही सुख उसको विष जैसा लगता है, फिर वो उस चीज का सपना भी नहीं देखना ज्यादा। और फिर प्रभुपाद इसके और भी आगे कहते हैं कि लोग फिर अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, विवाह क्या डिवोर्स ले लेते हैं, और उसको लगता है कि इस तरह से मैं सफल हो पाऊंगा, लेकिन उसमें फिर शोक करता है, कितना मैंने कितने सपने देखे थे, सात जन्म तक साथ में रहने के वादे किए थे,
7 लाख रुपए देने पड़े
7 लाख रुपए दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, तो ये सब होता है। मेरे सामने देखा हुआ ऐसा सब, क्या क्या सपने देखे, लव मैरिज किए थे, क्या क्या सपने देखे थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे और अब एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे को देख नहीं पाते, सहन नहीं कर सकते किसी की उपस्थिति को। तो ये रजोगुणी सुख, इसमें विषाद शोक दुख रोता रहता है, देवदास बन जाता है, पड़ा रहता है, भाग गई पड़ा रहता है तो देवदास बन जाता है, या फिर विषाद कहने का तात्पर्य कि वो दुखी रहता है। ऐसे सुख जो होते हैं वास्तव में रजोगुणी है। जैसे आप कुछ चीज खाते हो आपको अच्छा लगता है, भौतिक सुख में कैसा होता है कि आप कुछ खाते हो खुजाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर खुजली का रोग है तो खुजली के रोग में क्या होता है कि आप खुजाओ, आपको लगे वाह इतना संतोष आज तक कभी नहीं हुआ, और खुजाते रहते इतना नहीं और खुजाओ फिर क्या होता है, खून आ जाता है तो फिर अब तो खुजा तो सकते नहीं, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, यहाँ तो खून आ गया तो क्या करे, तो अब दुख हुआ, तो यही कारण है। तो आप रजोगुणी सुख में ऐसा होता है, शुरू शुरू में अमृत जैसा होता है, बाद में फिर जहर जैसा हो जाता है। अब तो यस
मतलब मैं जब मैंने ये श्लोक पढ़ा था फर्स्ट टाइम तो बहुत मतलब इससे मैं मतलब बहुत मुझे बहुत बार मैंने कॉन्टेम्प्लेट किया था इसपे, तो मुझे इसमें मैं मुझे ये समझा था कि इसमें शायद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अभी मतलब पूरी लाइफ कोई रजोगुणी सुख का अनुभव किया, BMW में घुमा वगैरह वो बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी तरह के पाप कर्म किए जिसमें भी वो सुख का अनुभव कर रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में या
बिगर स्केल पे हुआ,
बिगर स्केल में ऐसा उसको इंटरप्रेट कर सकते
हैं। यस यस यस, बड़े लेवल का है। जैसे छोटे लेवल में तो हमने बताया कि अगर आपने पांच कटोरी रबड़ी खा ली, ये छोटे लेवल पे तो पेट खराब हो गया एग्जैक्ट। लेकिन बड़े लेवल पे क्या होता है कि बहुत ऐश्वर्य भोग किया, बहुत पाप कर्म किए, इस समय में उसको लगता है कि कितना सुखी है। कोई कई बार भक्त लोग भी हमारे पास आते हैं, कई बार हमें कहते हैं कि प्रभु जी आप कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वो केवल दुखी होते हैं, वो सुखी नहीं होते, लेकिन मैं तो ऐसा देखा नहीं। मैं तो देखता है कृष्ण भक्त नहीं है वो तो फाइव स्टार ऑल्टर के सेवा तो वो रहता नहीं है, और वो सब प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास होता है, दिखने में भी सुंदर होता है, बुद्धि भी होती है उसके पास, तो ऐसा कैसे, वो तो सुखी है। इसलिए फिर हम उनको बताते कि सुख की परिभाषा क्या है। अभी टेक्स्ट नंबर 39 के बाद फिर प्रभुपाद का एक लेक्चर है सुख की परिभाषा के विषय में प्रभुपाद बताते भी है। तो सुख जो होता है वो भौतिक ऐश्वर्य के आधार से नहीं नापा जाता है, क्योंकि इंद्र तृप्ति जो है वो इंद्रियों के माध्यम से होती है और इंद्र तृप्ति से सुख नहीं मिलता है। नहीं तो यही एग्जाम्पल अपने आप में काफी है कि आप 6 कटोरा रबड़ी खा लिया तो आपको इंद्र तृप्ति तो हो रही थी, आपको तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वही रबड़ी आप आज नहीं खा सकते, अब नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो रबड़ी तो वही है, वो तो चेंज नहीं हुई। तो क्या हुआ, आप जीवा भी आपकी वही है, वो भी चेंज नहीं हुई, सब कुछ तो वही है, लेकिन चेंज क्या हो गया, चेंज हो गया हमारा इच्छा। तो इसका कारण क्या है कि जो शुरुआत में दुख सुख देता है इंस्टेंटली रजोगुणी, और बाद में वो दुख देने लगता है, कष्ट देने लगता है, फिर वो पड़ा रहेगा नरक के अंदर कई कई जन्मों तक, कई कई जन्मों तक, कोई लिमिट नहीं उसकी। एक व्यक्ति था, अभी वो ऐसा दावा कर रहा था कि संसार में जितनी स्त्रियों का मैंने भोग किया है शायद मेरे समान ऐसा कोई नहीं है। बड़ा उसने अपना संस्था भी बनाया, सब कुछ किया, तो वो ऐसा दावा कर रहा था कि मैं मुझसे अधिक इंद्र भोग किसी ने नहीं किया ऐसे, तो वो खुद ही बोल रहा है बार बार। तो क्या होगा इसका परिणाम, तो अनेक अनेक जन्मों तक फंस पड़ा रहेगा नरक के अंदर, लाइक दैट। सो टेक्स्ट नंबर 39।
तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वो तामसी कहलाता है।
तात्पर्य
जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वो निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वो भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह है, उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख तथा अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है।
Yes. तो यहाँ पर कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा होता है वो, उसको कुछ नहीं पता आत्म साक्षात्कार के विषय में, और शुरू से लेकर अंत में केवल मोह से ग्रस्त रहता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर वो भी कहते हैं कि शुरुआत में उसको भौतिकवादी व्यक्ति के रजोगुणी में क्या होता है कि शुरू शुरू में तो उसको अच्छा लगता है, बाद में दुख होता है, लेकिन इसका तो शुरू में भी दुख बाद में भी, जैसे शराब पीना। अब शराब पिएगा तो शराब का स्वाद थोड़ी कोई आपको ऑरेंज जूस जैसा होता है, शराब का जो स्वाद होता है वो कड़वा ही होता है, और वो भी सड़ी हुई चीज होती है, सड़ी हुई चीज, तो प्रारंभ में भी वो कष्ट भुगत रहा है और बाद में भी कष्ट भुगत रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पशु की हत्या कर रहा है तो पशु की हत्या करना अपने आप में कष्ट वाला है, लेकिन उसका परिणाम भी बाद में आएगा ऐसा, उसका कष्ट भुगतने वाला। तो शुरुआत में भी अमरूद कड़वा होता है और बाद में भी कड़वा होता है, शुरुआत में मीठा नहीं होता वो। तो इस तरह से वो व्यक्ति निंद्रा और आलस्य से उत्पन्न हुए सुख को भोग करना चाहता है, उसको निंद्रा शब्द से सुख मिलता है, निंद्रा फिर सोता ही रहता है, फिर आलस्य पानी रहे, यहाँ बैठा है सोफे पे, उसको बोलो एक गिलास पानी लेके आओ, इतना दूर जाके पानी लेना, इतना आलसी होता है वो, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है। श्री प्रभुपाद जी श्रीमद भागवतम के एक छठे कैंट में बता रहे थे, तातुर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख के बीच में ये डिफरेंसेस है। भौतिक सुख में आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति संसार में, भौतिक विश्व में आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है तपकरी के रूप में। तपकरी, तप प्रभुपाद यूज्ड पर्टिकुलर वर्ड तपकरी। तपकरी का अर्थ होता है दुख देने वाला। सेम शक्ति, वही आलादिनी शक्ति है भगवान की, आनंद देने वाली शक्ति, लेकिन वो आलादिनी तपकरी, आह्लाद तपकरी बन जाती। अर्थात जो संसार में मटेरियल वर्ल्ड में सुख के लिए भागते हैं, मे बी इफ यू एनी वे आई ट्रांसलेटेड, तो जो सुख के लिए भागते हैं वो भगवान की वास्तव में आराधनीय शक्ति का विपरीत जो रिफ्लेक्शन है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। आराधनीय शक्ति जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है भगवान की, तो तपकरी अर्थात आपको दुख देने वाली शक्ति बन जाती है। रिफ्लेक्ट का अर्थ क्या होता है कि अपसेट डाउन, पूरा ऑपोजिट। तो जो आनंद देने वाला होता है वो पूरी तरह से दुख देने वाला बन जाता है। तो फॉल्स हैप्पीनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड इज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस, एंड व्हेन वन्स एंडेवर्स फॉर हैप्पीनेस आर रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड, दैट पर्टिकुलर तपकरी एलिमेंट इज वैनक्विश्ड। तो वो नष्ट हो जाता है फिर वो तपकरी। अर्थात जहां जहां से हमें दुख प्राप्त हो रहा है ना, अभी अगर मैं भगवान की शरणागत हो जाता हूँ और अपने आप को संभाल लेता हूँ, तो वो सारी चीज आनंद के स्रोत बन जाते हैं। सब जगह से सुख मिलता है। सो प्रभुपाद एग्जांपल दिए, जैसे कि लकड़े में से अग्नि प्रकट करना वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किल होता है। लकड़ी में से अग्नि को प्रकट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब लकड़े में से अग्नि प्रकट हो गया या लकड़ा जो है उसको जलाया गया, तो वो अग्नि लकड़े को भस्म करने के लिए इनफ है। उस लकड़ी को खत्म कर देगा, वो भस्म कर देगा। दूसरे शब्दों में भगवान का अनुभव करना, कृष्ण का अनुभव करना, ये बहुत मुश्किल है। कृष्ण का अनुभव करना, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का अनुभव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर आप भगवान के शरणागत हो जाते हो, भक्ति में जुड़ जाते हो, या फिर भगवान की शरणागति स्वीकार करते हो, तो सब कुछ उस भक्त के लिए आसान हो जाता है। उसी तरह से आसान हो जाए जैसे अग्नि के लिए लकड़े को जलाना। लेकिन किसी अभक्त के लिए लकड़े में से अग्नि जलाने की तरह हो जाता है, ऐसा ऑपोजिट हो जाता है। और ऐसा जो भक्त होता है वो तुरंत भगवान को प्रसन्न कर सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। फिर एक जगह प्रभुपाद जी ने बताया कि वास्तविक आनंद क्या होता है। वास्तविक आनंद का अर्थ होता है कृष्ण को संतुष्ट करना। नित्य स्वास गति में विष्णु, भगवान को प्रसन्न करना यह वास्तविक आनंद है। और वो तब प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि पहले आप राधा कृष्ण की पूजा कर दो। केवल कृष्ण की पूजा कोई नहीं करता, वैष्णव जो होते हैं वो कृष्ण की अकेले की पूजा नहीं करते, वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राधा रानी वो आनंद देने वाली शक्ति है भगवान को। इसलिए वृंदावन में सब लोग जय राधे बोलते हैं, राधे श्याम लिखते हैं, राधे राधे बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि राधा रानी सबसे दयालु है। अगर हम राधा रानी का सेवा करते हैं तो राधा रानी रेकमेंडेशन देते हैं, ठीक है मैं तो भक्ति में नहीं हूं, मुझ में तो कोई भक्त नहीं है, मुझमें कोई भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्त जो मेरे पास आया है ये बहुत अच्छा भक्त है, कृष्ण आप इस पर अवश्य कृपा करना। अब राधा रानी बोलते हैं कि इस पर कृपा करना, जब कृष्ण तो हेल्पलेस हो जाते हैं। कृष्ण को कृपा करना ही पड़ता है क्योंकि राधा रानी ने बोला है। तो इसलिए जो भक्त होता है वो वास्तव में सुखी हो सकता है क्योंकि वो कृष्ण को राधा रानी के माध्यम से प्रसन्न करता है। कृष्ण स्वयं में कुछ नहीं है, अर्थात राधा रानी की प्रॉपर्टी है, वो राधा रानी का अपना संपत्ति है कृष्ण, तो उनकी संपत्ति को उनको पूछे बिना नहीं लेना देना चाहिए। तो राधा रानी के थ्रू ही हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। बिना राधा रानी के थ्रू कृष्ण के पास जाएगा कोई भी व्यक्ति तो उसको अभिमानी माना जाता है और उस व्यक्ति को कृष्ण प्राप्त नहीं होते। सो आध्यात्मिक प्रसन्न सुख का जो सही साधन है वो राधा कृष्ण की सेवा है, वो सबसे उत्तम सुख का स्रोत माना जाता है। सो लाइक दिस वी फाउंड थ्री डिफरेंट वेज। नाउ 40वां पढ़ लीजिए, देन वी अच्छा ये 40वां नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है। सेक्शन खत्म हो गया, अभी वर्णाश्रम आएगा सुझाव 46 तक होगा शायद।
हाँ 40 में खत्म हो गया,
40 में खत्म हो गया,
ठीक है 40वां पढ़िए।
इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो।
तात्पर्य
भगवान इस लोक में समग्र ब्रह्मांड की प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं।
तो तीन गुणों से मुक्त केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है कि जो भगवान का भक्त है, अन्यथा वो कोई भी व्यक्ति तीन गुणों से मुक्त है। स्वर्ग में चले जाओ, पृथ्वी पे चले जाओ, नीचे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तीन गुण से कोई भी मुक्त नहीं होता है, कोई भी मुक्त नहीं है। जैसे आप पक्षियों में भी तीन गुण पाए जाते हैं, पशुओं में भी तीन गुण पाए जाते हैं, इस तरह से सब जगह पर तीन गुण पाए जाते हैं। आपको प्रॉपर एक एग्जांपल ये भी है, जैसे पृथ्वीयाम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, सत्व स्वर्ग में भी होता है। फिर प्रॉपर एग्जाम्पल दिया वृक्षों का, जैसे वृक्ष में भी पाया जाता है तीन गुण। जैसे कुछ वृक्ष होते हैं जिनमें मीठे फल आते हैं और खुशबू वाले पुष्प आते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें फल फूल कुछ नहीं आता है, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जिसके फल खाने से आदमी मर जाता है, या जिसमें कांटे होते हैं जिसको छूने से खून आ जाता है। तो इस प्रकार से तीन गुणों के आधार से वृक्षों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। जैसे गाय है तो सत्व गुण ही है, सबसे उत्तम पशु माना जाता है, लेकिन वो अच्छा खाना देती है, अलग दूध दही दूध की सारी अच्छी जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है तो वो सब देते, लेकिन सुअर या कुत्ता बिल्ली ये थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास एनिमल है सब। इसलिए पक्षियों में भी ऐसा होता है, ऐसे पक्षियों में भी स्वान हंस, तो हंस हमेशा स्वच्छ जगह पर निर्मल सरोवरों में रहना पसंद करते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। बर्ड्स विद द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, हमेशा एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और शुद्ध स्थान में आज रमणीय स्थान होते हैं सब। आपको आजकल स्वान देखने को मिलता ही नहीं है ना, हंस देखने को मिलता ही नहीं है, कहीं जगह ही नहीं बची कोई शुद्ध स्थान, कोई सरोवर ढूंढना पड़ता है दूर दूर जा करके। लेकिन कौवे कहाँ रहना पसंद करते, कौवे रहना पसंद करते सब जहाँ नीम के पेड़ पे, गंदी स्थान में या कचरा कूड़ा ढेर पड़ा होता है वहां पर जाके बैठ जाता है और वहां पर वो नॉइस करता है, उसको उसका कुछ मधुर नहीं होता है। तो इस तरह से पक्षियों में भी, लेकिन कुछ लोग ये ऐसा चाहते हैं, प्रभुपाद यह बताए कि सम पीपल दे आर लुकिंग फॉर क्लासलेस सोसाइटी, लेकिन क्लासलेस सोसाइटी कैसे हो सकती है, कैसे हो सकता है क्लासलेस सोसाइटी, सब हर एक चीज में डिविजन है, हर एक चीज में डिविजन है, हर एक चीज में कैटेगरी मिलेगी आपको, कोई अच्छा होगा कोई कम अच्छा होगा, कोई बुरा होगा कोई कम बुरा होगा, सब जगह ये तो होगा ही। तो यू कैनॉट गो फॉर क्लासलेस सिविलाइजेशन, ये मूर्खता का प्रदर्शन है, ये लॉजिकल नहीं है। सो नेक्स्ट अभी वर्णाश्रम की चर्चा आएंगे नेक्स्ट टाइम. मैं सोचा था कि जल्दी आज अपना खत्म होता तो छोटा ड्रामा करना था, लेकिन अगर आप चाहो तो ये ड्रामा करके लेके आ सकते हो. आई कैन गिव द सब्जेक्ट टू डू द ड्रामा. इट्स नॉट ड्रामा, रादर इट्स अ स्किट. आई मीन या यू कैन कॉल इट ड्रामा. पर्सनल एप्लीकेशन दो के साथ कर सकते हो, एक भी कर, अकेले भी कर सकते हो, एज यू विश. तो चार ड्रामा करना है तो आप आपस में डिसाइड करो. दो ग्रुप बना करके कर सकते हो या फिर एक हर एक ग्रुप चारों चार करे, वॉट एवर. तो कर्ता, फिर ज्ञान, धृति, सॉरी कर्ता बुद्धि धृति और सुख. कर्ता बुद्धि धृति और सुख, ये चारों को गुणों के आधार से, तीन गुणों के आधार से उसको स्किप के माध्यम से दिखाना है. श्लोक श्लोक आप घूम लोगे राइट.